अस्सलाम वालेकुम. हेलो एंड गुड मॉर्निंग. सुबह बखैर, खुश आमदीद एंड वेलकम बैक टू द धांसुदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 12 तारीख है आज मार्च की. इट्स द 12th ऑफ मार्च. ट्यूसडे का दिन है, मंगल का दिन है और पाकिस्तान में पहला रोज़ा है. तो रमज़ान मुबारक टू एवरीवन. ट्यूसडे और मंगल का दिन, उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल वेर एवर यू आर, हु एवर यू आर. और बहुत बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. छोटी छोटी विन्स होती हैं ज़िंदगी में. किसी भी चीज़ में ज़रा सी बेहतरी आए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि इंसान सुख का सांस ले ले. घबराहट का अगर कोई सिलसिला चल रहा होता है या कोई चीज़ पूरी नहीं हो रही होती या ख़राब हो रही होती है, वो आपकी ज़िंदगी का कोई भी पहलू हो, तो उसमें ज़रा सा भी अगर रिलीफ मिले तो लंबा सांस खींचना चाहिए. सब्र शुक्र तो इंसान कर ही लेता है, लेकिन वो जो घबराहट की कैफियत होती है उसको कंट्रोल करने के लिए वॉट एवर यू गेट इन बिटवीन, जिसको आप रिलीफ कंसिडर कर सकते हैं वो करें. एंड यस्टरडे वी एक्सपीरियंस्ड अबाउट अ 10% रिलीफ आफ्टर 7 days विद माई फादर. सो आई एम सुपर सुपर ग्रेटफुल टू एनी वन एंड एवरी वन हु मे हैव प्रेड, बिकॉज कल सुबह भी मैं बता ही चुकी थी एंड दिन भी बहुत मुश्किल था. बट अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह कोई अभी वी डोंट हैव एनी क्लैरिटी. वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, अ लॉट ऑफ टेस्ट दिस दैट द अदर. बट कल रात अबू वॉज एबल टू स्लीप, सो आई विल टेक दैट एज अ विन, बिकॉज जो इंसान सो ही ना रहा हो उसको फिर कैसे रिकवरी किसी किस्म की हो सकती है. व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. कल पहला रोज़ा था मुख्तलिफ ममालिक में. मैंने बताया था सऊदी अरब, दुबई, अमरीका के कुछ हिस्सों में और कनाडा के कुछ हिस्सों में. कुछ हिस्सों में इसलिए कह रही हूँ बिकॉज वहाँ पे भी थोड़ा सा डिवाइडेड रहता है. बट पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद गालिबन ये हुआ कि कल हर जगह जो है वो चांद की शहादतें जो है वो टाइम पे आई हैं. वो बहुत मरतबा हो चुका है कि ये रात को 9 बजे है तो 10 बजे पता चल रहा है. वक्त पे जो है मालूम हुआ. खैर खैरियत से ये बाबरकत माँ जो है वो उसका आगाज़ हो चुका है और अल्लाह करे कि इसी तरह सिलसिला जारी रहे. दूसरी चीज़ दुनिया की खबरों में फाइनली आज कोई 3 हफ्ते से ज़्यादा के बाद डेस्कटॉप पे चल रहा है ट्विटर, बिकॉज डेस्कटॉप पे नहीं चल रहा था यहाँ पे. एंड आज सुबह अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब पोस्ट किया था आज का सवाल तो वो VPN के बगैर चला, तो खुशी हुई. मैंने कहा चलो रमज़ान की खुशी में इसे. एंड द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग इज, आर देयर एनी प्रॉमिसेस और कमिटमेंट्स दैट यू जनरली मेक एंड कीप इन दिस मंथ, या एनी रिचुअल्स? इस माह को अगर आप निभाते हैं, इस माह की अगर आप को कबूल करते हैं एज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस मंथ्स दैट यू कुड. बहुत सारे लोग जो कि मुसलमान नहीं भी होते हैं इस माह की अहमियत को समझते हैं, विच इज़ द ब्यूटी ऑफ इट, कि लोगों में अब क्यूरियोसिटी है दैट दे वॉन्ट टू नो अबाउट ईच अदर इन लाइफ इन अदर रिलीजन्स ऑल्सो. सो कोई ऐसी कमिटमेंट्स है जो जनरली आप लोग करते हैं इस माह में, वेदर आप रोज़ा रखते हैं या नहीं रखते हैं वो आपके और परवरदिगार के दरमियान है, वेदर आप और चीज़ें करते हैं या नहीं. बट वैसी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप शेयर करना चाहें या रिचुअल्स ही ऐसी चीज़ जो कि आप बाकायदगी से ज़रूर करते हैं, वो कि उसमें कोई मज़ेदार चीज़ भी हो सकती है, वो मजहबी पहलू से ना सही. इट कुड बी विद फ्रेंड्स, इट कुड बी विद फैमिली. जस्ट अ वेरी लाइट क्वेश्चन दिस मॉर्निंग, बिकॉज पहला रोज़ा बहुत सारे लोगों के लिए वैसे भी चैलेंजिंग होता है. रूटीन डिफरेंट होती है, सुबह उठने की, खाने पीने की एंड ऑल ऑफ दैट. सो द क्वेश्चन इज वेरी लाइट. कोई जोर जबरदस्ती नहीं जवाब दे सके तो जबरदस्त, नहीं दे सके तो कोई गल नहीं. व्हाट एल्स इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. बाबर आजम इज ट्रेंडिंग, केट मिडलटन इज ट्रेंडिंग. Was something to do with a picture that she posted and then retracted, had to retract it because it was edited. Falana Dhamkana, Peshawar Zalmi, Shan Masood, Sean King, Mohsin Naqvi, Marwat, Gaza Holocaust. Uske ilawa, Gaza Holocaust. Acha, interesting. Because Holocaust ki भाई जो है सो गया. होलोकॉस्ट का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल एक ही इंसिडेंट बहुत ही होलनाक किस्म का जनरली कंसिडर किया जाता है उसके बारे में जब बात की जाती है. सो गाज़ा के साथ होलोकॉस्ट का लफ्ज़, आई एम वंडरिंग व्हाई स्पेसिफिकली जेनोसाइड का लफ्ज़ तो इस्तेमाल हो रहा था जो कि इट इज़ व्हाट इट इज़. बट एनी हाउ, पेशावर शादाब, अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट लेडी. वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जिसमें पहली मरतबा एक प्रेसिडेंट की औलाद जो है इज़ द फर्स्ट लेडी. I have very reserved comments about this because I found it strange. I mean, why not bhi keh sakta hai insaan, lekin why necessarily? Uske ilawa, Trump is a national disgrace is also trending. Haan, sis le rahi hoon because he is just quite a character, isn't he? Other than that, finance minister ka role assume kar liya hai Aurangzeb saab ne, jo ke ek bahut hi jane mane idare bank के हेड रह चुके हैं, हेड थे बल्कि. इज अ वेरी सीजन बैंकर, ही रिसीव्स अ वार्म वेलकम फ्रॉम अ लॉट ऑफ द सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द मिनिस्ट्री एंड आई थिंक अदर पीपल विल आल्सो प्रोबेबली नॉट बी डिसअपॉइंटेड. अभी तक तो एटलीस्ट ये खबरें मिली हैं. प्रोलिफरेटिंग न्यूज साइट्स, पी यू ए आई जनरेटेड फेक स्टोरीज, ए की मतलब है. इसके ऊपर भी नजर डालते हैं. माइक्रोसॉफ्ट सेज रशियन स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स ट्राइंग टू ब्रीच इट्स सिस्टम्स अगेन. क्या तकलीफ होती है लोगों को बैठे 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 होती है ना. और फिर अगर इल्जाम जो है वो किसी हवा में नहीं लगाए जाते, इस तरह के इदारे जब इल्जाम लगाते हैं तो उसका पूरा एक बैकग्राउंड होता है, एक ट्रेस होता है. ए आई टैलेंट वॉर हीट्स अप इन यूरोप. सो ए आई के हवाले से दो तीन इस तरह की खबरें हैं. उसके अलावा निवीरिया इज सूड बाय ऑथर्स ओवर ए आई यूज ऑफ कॉपी राइटेड वर्क. अब एक ऐसा इदारा जो कि सुपर अच्छा कर रहा था इन टर्म्स ऑफ देयर शेयर्स, इन टर्म्स ऑफ देयर प्रॉफिट्स, उसी के हवाले से ऑलरेडी खबर आ गई दैट इट इज बीइंग सूड. व्हाई इज इट बीइंग सूड, इस पे भी नजर डालेंगे. सो वंस अगेन, रमजान मुबारक टू ऑल ऑफ यू हु ऑब्जर्व इट. इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू'ड लाइक टू शेयर, दैट यू डू पर्टिकुलरली इन रमजान, आई'd लव टू नो. अदर देन दैट, इसके अलावा हेल्थ स्पेस में क्या हो रहा है, टेक स्पेस का तो मैंने मैंशन कर दिया है, इंटरनेशनल फ्रंट पे क्या हो रहा है, सब चीजों पर नजर डालेंगे. लेकिन फिलहाल के लिए Good morning, Pakistan.
All right, then what's happening around the world? Surprisingly, kal jo ke shayad zyada zarurat thi after such a hectic and trying couple of days, I think ghanta mere khayal mein dekha hoga kal raat ka match. Us ghanta bhi nahi, not even half an hour. And then I don't know what happened. What happened last night? Hang on one second. Who won last night, bhai? I'm guessing Peshawar Zalmi. I'm guessing isliye ke because I think they're doing really well and I'm definitely on their side to make it to the semis, hai jo bhi aap usko kehna chahein. Aaj kya hai tarikh? Aaj hai 12, right? So, aur kal thi Peshawar Zalmi won by 2 runs. Yani ke Karachi Kings were not able to make the runs because they batted second, na? Even with 5 wickets in hand. Ooh, interesting. Very, very interesting. Very interesting. Achha ji, and aaj match hai ji. Kiska? Quetta Gladiators and Multan Sultans ka. So, uske baad ab decide hoga ki ye jo finals hain jinko playoffs kahenge. Yeah, haan. Ek, do, teen, char match rahe gaye sirf. Oh no! Uske baad khatam ho jayega abhi. उसके बाद हम क्या देखेंगे. इट्स डेफिनेटली अ गुड डिस्ट्रैक्शन. सो निवीडिया इज सूड बाय ऑथर्स ओवर एआई यूज ऑफ कॉपीराइटेड वर्क्स. बिफोर आई रीड दिस, पहले भी ऐसी सिचुएशन हो चुकी है. अब एआई का इस्तेमाल, और इसके बारे में हम अक्सर बात कर चुके हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट टूल्स के जरिए, डिफरेंट चीजों के लिए कमर्शियल लेवल पे भी इस्तेमाल हो रहा है. और ये पहले भी एक दो केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि आप इन्फॉर्मेशन जब पिकअप करते हैं, तो फॉर एग्जांपल जैसे चैट जीपीटी है, इन्फॉर्मेशन पिकअप करते हैं आपको ऑटोमेटेड तरीके से, आप एंटर करते हैं चीज़ों को और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. वो इन्फॉर्मेशन का कोई सोर्स होता है, वो सोर्स किसी ना किसी का किया हुआ काम होता है जिससे चीज़ें एक्सट्रैक्ट की जाती हैं एज इज नहीं. तो वो प्लेजरिज्म से रिलेटेड एक सिचुएशन पहले भी बनी थी that came to light. So Brian Keane, Abdi Nazimian and Stuart Onan said their works were part of a data set, see again, of about 196,640 books that helped train Nemo, jo ke इनका AI प्लेटफॉर्म है टू सिम्युलेट ऑर्डिनरी रिटन लैंग्वेज बिफोर बीइंग टेकन डाउन इन अक्टूबर ड्यू टू रिपोर्टेड कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट. कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज को इस्तेमाल किया जाए इजाजत के बगैर जो किसी और ने बनाई है या तश्कील की है. यूजुअली इसको एज इट इज में कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट कहा जाता है, यानी कि वैसे उसमें से कोई एक जुमला भी अगर उठाया जाए तो वो भी प्लेजरिज्म या कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट में आता है. अब स्टाइल ऑफ राइटिंग को तो नहीं मैं कह सकती, मौजू पे जो इन्फॉर्मेशन होती है जब आप फॉर एग्जांपल जर्नल्स का इस्तेमाल करते हैं तो जर्नल्स में से भी आपको कोट करना होता है, साइटेशन अगर आपने मास्टर्स किया है या इवन शायद बैचलर्स में भी ये होता हो तो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड देन यू हैव टू पुट योर पेपर्स थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स जो प्लेजरिज्म चेक करते हैं जैसे टर्निटिन वगैरह होता है. हम तो यही करते थे जब हम मास्टर्स कर रहे थे. सो उसमें फिर पता चल जाता है कि आपने किसी की नकल उस तरह की है कि नहीं. नकल की होती है तो आपको वो हाईलाइट करके कह देता है आपने कहीं से छापा मारा है, आपका पेपर नहीं एक्सेप्ट हो रहा. सो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे शुक्र है कि इस तरह की एक यू नो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बनाया गया है जो दुनिया भर में अडॉप्ट किया जाता है. बिकॉज दुनिया भर में पाकिस्तानियों को कर समझा जाता है कि वो छापा मारते हैं, नहीं, स्टूडेंट्स के लिए कन्वीनियंट हो जाता है ना कहीं से इन्फॉर्मेशन लेना. तो इन्फॉर्मेशन का सोर्स तो चाहिए होता है क्योंकि खुद सब साइंसदान थोड़ी होते हैं, खुद सब रिसर्चर्स थोड़ी होते हैं. किसी मौजू पर अगर तहकीक कर भी रहे होते हैं तो उसका कोई सोर्स होता है, लेकिन उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और अपनी अकल अपना एनालिसिस उस इन्फॉर्मेशन से एक्सट्रैक्ट करके आप किस तरह अपनी राय का इजहार करते हैं, दैट has to also be there. So AI के ऊपर ये एक I think it's a very fine line जो कि consistently evolve कर रही है चूंकि चीजें AI platforms के हवाले से अगर बात करें. So it's going to take a bit of time to understand कि क्या चीज copyright infringement में आती है और क्या चीज copyright infringement में नहीं आती है. Other than that, what's happening जी, his name is Mohammed Aurangzeb. He is the finance minister. He's been sworn in as the finance minister. उन्होंने तकरीबन 35 साल काम किया है मुख्तलिफ banks में, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में भी काम किया है और बैन अल-अक़वामी सतह पर भी काम किया है. सो उन्होंने राइट फ्रॉम पाकिस्तान ऑल द वे अप टू द वेस्ट ही हैज़ वर्क्ड. ग्रेजुएट हैं वो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के वॉटन स्कूल के. एंड अब देखते हैं कि बहुत ही जो मुश्किल काम है जिसके लिए उन्होंने हामी भरी है वो किस तरह वो आगे लेके चलते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी 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 स्टीप हिल अप अ हेड. बड़ा एप्ट है, एप्ट इन द सेंस कि बड़ा ही मुनासिब है, मुनासिब इन द सेंस दैट हम जो मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक है ये जो वेक अप गुड मॉर्निंग वाला है ये 2 घंटे में 2 मरतबा चलाती हूँ मैं जनरली. दूसरा वाला आज काम नहीं कर रहा किसी वजह से, लेकिन चूंकि आज पहला रोज़ा है ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों के लिए बहुत रूटीन के मुताबिक भी होता है. अ लॉट ऑफ पीपल डू गेट अप इन द मॉर्निंग. अब शुक्र है कि बहुत सारे लोगों के बारे में मालूम होना शुरू हुआ है कि वो सुबह सवेरे उठते हैं. कुछ लोग नमाज के लिए उठते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज के लिए उठते हैं, कुछ लोगों के घर में कुछ ऐसा सिस्टम होता है तो इतनी दिक्कत उनको नहीं हुई होगी. लेकिन हमारी फिर भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है एंड इवन जिन लोगों को आदत है पहला दिन कैन बी अ लिटिल चैलेंजिंग और बोलने में खासतौर पर ड्राइव करने में इन दोनों चीज़ों में एनर्जी एक डिफरेंट लेवल की लग रहा होता है कि ज़रूरत है. सो ये वेक अप गुड मॉर्निंग जो लोगों को जगा रहा है BGM आज आई थिंक बड़ा ही मुनासिब है कि आज ही के दिन इसको चलाने की जरूरत तो नहीं बट मजबूरी हो रही है. व्हाट एल्स इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, हाउ टू स्लीप साउंडली ऑन अ प्लेन. ये एक चीज़ है जो कि लोगों को बहुत ही डिफरेंट कस्म के लोगों के बिहेवियर्स होते हैं प्लेन्स पे जहाज़ों पे. कुछ लोग जैसे ही जहाज़ जो है वो उड़ता है टेक ऑफ होता है वो थक करके सो जाते हैं, उसमें से मैं एक हूँ. अगर मैं थकी हुई हूँ, अगर मैं टायर्ड हूँ तो आई विल जस्ट, अगर टायर्ड नहीं हूँ तो हाँ देन आई लुक आउटसाइड द विंडो, यू नो आई यू नो मे बी प्ले अ वर्ड गेम ऑन माई फोन जब इजाज़त हो जाती है कि अब आप फोन इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर लंबी परवाज अगर कहीं बाहर के मुल्क जा रहे हैं तो उसमें तो कोशिश ज़रूरी करनी चाहिए. लेकिन कुछ लोग बिल्कुल नहीं सो पाते हैं, कॉन्स्टेंटली रेस्टलेस. मैं रेस्टलेस होती हूँ, करवट बहुत बदलती हूँ, लेकिन और चूंकि मुनहनी सी हूँ तो आसानी होती है कि इवन अगर लंबी परवाज हो तो मैं सीट के ऊपर टांगे अपनी फोल्ड करके आराम से लेट जाती हूँ. सो दैट इज़ नॉट एन इशू एज सच, बट कुछ लोगों को बहुत दिक्कत होती है. टर्माइट फॉसिल्स प्रूव मेटिंग हैज़न्ट चेंज्ड इन 38 मिलियन ईयर्स. डूड, किस तरह की रिसर्च लोग करते हैं, इंटरेस्टिंग. वॉट इज अ लूनर इक्लिप्स एंड व्हेन विल द नेक्स्ट वन हैपन. चांद ग्रहण कब नेक्स्ट होगा. उसके अलावा क्या है, play to find out which birds dominate at you. And nahi. See how these fierce dinos evolved in our pages over 100 years. Nahi, isme bhi interest nahi hai mujhe. To see the real Los Angeles, visit its historic movie theaters. Interesting. Trace Oppenheimer's footsteps from New Mexico to the Caribbean. Oscars happened yesterday. Agar aapko movies se lagao hai aur Hollywood ki movies se lagao hai and Western movies se lagao hai, to then you would have followed what happened. Kuch badi interesting cheezein hui. At the stage, Oppenheimer took maximum wins, if I'm not mistaken. Barbie took least, even though it was a film which brought in सबसे ज्यादा आई थिंक बॉक्स ऑफिस नंबर्स अराउंड द वर्ल्ड, लेकिन उसके बावजूद और टॉपिक भी बहुत जरूरी था जिसको टच किया गया था, बट देन समटाइम्स यू नो थिंग्स डोंट गो द वे वी आर एंटिसिपेटिंग. सो बाफ्टा पे भी यही हुआ था एंड बाफ्टा पे फिर भी आई थिंक मतलब नॉट के बार्बी डिडंट विन एनी अवार्ड्स, बट एनी हाउ तो यू कैन गो एंड हैव अ लुक के ऑस्कर्स पे कल क्या हुआ था. कल कुछ बड़ी ही दिलचस्प किस्म की चीजें हुई थी, इंक्लूडिंग जॉन सीना वॉकिंग आउट एक्सक्यूज मी ऑन स्टेज कल ऑस्कर्स पे. कॉस्ट्यूम डिजाइन के हवाले से कैटेगरी अनाउंस कर रहे थे, जिस तरह वो बाहर आए मेरी नजर पड़ी कल उस पर ना, उस लाइक यार ये क्या करते हैं लोग हरकत, हंसी भी आई शर्म भी आई, बट एनी हाउ. सो ओपेनहाइमर का ये जो जिक्र ट्रैवल के हवाले से करे, ओपेनहाइमर बनी अगर फिल्म है उसका एक बैकग्राउंड है, उसकी एक हिस्ट्री, वो क्या है, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो जरूर मैं इस पर नजर डालूंगी. कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द आवर, यानी 10 बजने वाले हैं. सो मुलाकात होती है आपसे अभी 10 बजे के बाद. वापस आएंगे तो वी विल हैव अ लुक एट सम ऑफ दीज थिंग्स. कुछ नेचर के हवाले से हैं, कुछ साइंस के हवाले से हैं, बट आई एम लीविंग यू विद व्हाट राइट नाउ. That's what I'm figuring out abhi. Chalo, ye sun lete hain aaj. This would be very nice to hear. I'm leaving you with Nazia Hassan for a little bit. Sunte rahiye Coffee Mornings with Salmeen Ansari. Welcome back. Dusre ghante ki shuruaat, second hour kicking off. Aap sun rahe hain Coffee Mornings with Salmeen Ansari. Main hoon Salmeen Ansari and this is Mera FM 107.4. Kal, I don't know, maine zikr kiya tha is cheez ka ki nahi when I was talking about my dad. But ek cheez yaad rakhiye ki खुद इंसान को एक रियलिटी है, ऑब्जर्वेंट होना यानी गौर करना बहुत ज़रूरी है. आपको क्या बताया जा रहा है और आप उसको किस तरीके किस हद तक समझ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जब आप किसी के का ख्याल रख रहे हो, आप केयर टेकर हों, वो आपका बच्चा हो, आपके बहन भाई हो, आपके वालदेन हों, वो बीमार हों या बीमार ना हों. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें तब भी हमें कभी कभार तबीब के पास जाना पड़ता है, जिसमें बीमारी ज़रूरी नहीं है बट कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं कभी, खासतौर पर जब बच्चे होते हैं तो यू नो सर्टन वैक्सीनेशंस लगनी होती हैं, दिस दैट दी अदर. सवाल पूछने से कभी मत कतराइएगा और कोई भी डॉक्टर या आपको अटेंडेंट कभी भी आपको कहे हमें करने दें अपना काम तो उसको झड़कने से मत कतराइएगा. जबकि मैं बहुत इज्जत करती हूँ उन तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स की जो कि हमारी जान बचाने में, हमारा ख्याल रखने में यू नो अपना बहुत ज़्यादा पेशेंस, टॉलरेंस, वक्त, नॉलेज, हर चीज़ जो है वो डेडिकेट करते हैं. लेकिन और उनका काम भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर कोई आपको जवाब देने से कतराए तो दैट इज़ ऑलवेज अ रेड फ्लैग. या जल्दी आपको करवाए, आपके लिए जाहिर सी बात है आपका जो अजीज होता है वो सबसे अहम होता है, उनको टाइम भी मैनेज करना होता है, उनको सारे पेशेंट्स को भी मैनेज करना होता है. लेकिन सवाल का जवाब जब तक आपको ना मिले आप दोबारा ज़रूर पूछिए. आप तालीम याफ्ता हो या आप तालीम याफ्ता ना हो, आपके पास जब इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जब वो जवाब देंगे कौन सी दवाई दी जा रही है, क्यों ये दवाई दी जा रही है, पक्की बात है कि इससे कोई रिएक्शन नहीं होगा, ये टेस्ट क्यों कराया जा रहा है, कितनी देर में पता चलेगा, कोई भी बेसिक सवाल, अगर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन जो दी गई है उसका आपको कोई सेंस नहीं है, आप एडुकेटेड हो सकते हैं तब भी, मतलब तालीम याफ्ता हो सकते हैं तब भी आपको शायद ना समझ आए बिकॉज आपका बैकग्राउंड ही ऐसा नहीं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इन चीज़ों को देख देख के, पढ़ पढ़ के समझना भी शुरू कर देते हैं. आई एम वन ऑफ दोज पीपल, माई मदर इज़ वन ऑफ दोज पीपल, बट बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता है. तो आपको ऑब्जर्व इसलिए करना ज़रूरी होता है और सवाल इसलिए पूछना ज़रूरी होता है क्योंकि आपके आपका जो पेशेंट है, आप जिसका ख्याल रख रहे हैं, उसका बाद में आप ही को ख्याल रख रहे हैं. सो उसकी बॉडी अगर किसी तरीके से रिएक्ट करेगी किसी चीज़ को, विच इज़ वॉट वी एक्सपीरियंस विद आर फादर, नॉट जस्ट अ सिचुएशन जिसमें उनको बहुत तकलीफ थी बट एक्सट्रीम रिएक्शन टू मेडिकेशन, सो बैड कि अल्लाह ताला कभी भी किसी को ऐसा वक्त ना दिखाए कि मेडिसिन से ऐसा रिएक्शन हो. तो अगर हमें अपनी अकल समझ ना होती और हमें ये नॉलेज ना होती कि कौन सी कैटेगरी की दवाइयाँ जो हैं उससे पॉसिबली ये रिएक्शन हुआ है, पॉसिबली का हो सकता है, तो वो हम ना वो दवाइयाँ रोक पाते इमीडिएटली, ठीक, अगर हमने पढ़ा नहीं होता या यू नो पे अटेंशन नहीं किया होता, और ना सिचुएशन ये जो 10% भी अंडर कंट्रोल आई है वो आ सकती थी. सो नेवर एवर बी अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चंस. एनी डॉक्टर हु सेज आपको नहीं पता, क्या हमें अपना काम करने दें, आप चुप करके बैठे. मुझे याद है एक दफ़ा 10-12 साल पहले की बात है, एक डॉक्टर थे, ये जो सीजनल वायरल इन्फेक्शन हुआ हुआ होता है ये मुझे हुआ था, गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा, और सीना भी बंद हुआ हुआ था, बात नहीं की जा रही थी, वालिद साहब के साथ में गई थी अपने. उस डॉक्टर ने मुझे बात नहीं करने दी, मेरी तबीयत ख़राब थी, वेदर मैं खातून थी इसलिए, या वेदर वो, उन्होंने पहले तो बिल्कुल ही बात नहीं करने दे रहे, जब उन्होंने फिर एज देखी तो देन ही रियलाइज कि अच्छा ये 18-20 साल की नहीं है. सो एक्सक्यूज मी, उसके बाद भी मैंने कहा मैं अपनी हिस्ट्री ज़रा बता, आप चुप करके बैठे, दैट्स द फर्स्ट थिंग ही सेड, हमें अपना काम करने दें, यानी वो ऑब्वियसली सांस वांस चेक करते हैं, दिस दैट दी अदर, दैट्स ऑल ही डिड. अदर देन दैट उन्होंने सवाल नहीं पूछा कितने अरसे से क्या है क्या नहीं, नथिंग. ही गेव मी 13 मेडिसिंस विदाउट एग्जामिनिंग मी, विदाउट लिसनिंग टू माई पास्ट हिस्ट्री. मैंने उनकी दीवी एक दवाई नहीं ली, मैंने देसी इलाज किया, मैंने एक और डॉक्टर से रुजू किया, मैंने मजबूरन एंटीबायोटिक ली, मुझे क्लियरली याद है कॉफ सिरप ली, बहुत सारी देसी चीज़ें की और अपने आप को ठीक किया, क्योंकि ऐसे तबीब का कोई फ़ायदा नहीं है. जल्दी हो या ना जल्दी हो, आप पेशेंट के केयर टेकर का जवाब नहीं देंगे तो आप अपने प्रोफेशन के साथ तो गलत कर ही रहे हैं, आप इंसान के साथ गलत कर रहे हैं. क्यों इतनी कौन सी आपको जोर क्या बाथरूम आया हुआ है कि आप 30 सेकंड नहीं ले सकते. इमरजेंट सिचुएशंस में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो सर्जरी भी कर रहे होते हैं और वो पेशेंट्स को भी देख रहे होते हैं, राइट, लंबी लंबी सर्जरीज के बाद, और दिमाग बहुत कंज्यूम होता है बिल्कुल, तो आप 30 सेकंड ले लीजिए, 4 मिनट ले लीजिए, 10 मिनट बाद आ जाइए और उसके बाद बात कीजिए. लेकिन बात करेंगे पेशेंट से और जवाब नहीं देंगे, उसको चुप करने को कहेंगे, एग्जामिन करते हुए आप कह सकते हैं प्लीज थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाइए, दैट्स फाइन. और हर एक का तौर तरीका बात करने का मुख्तलिफ होता है, ये भी मैं बात को समझती हूँ. मैं दो मेरे मदर और फादर दोनों के जो डॉक्टर्स रहे हैं हार्ट से रिलेटेड, एक जो है वो इस्लामाबाद के एक अस्पताल में होते हैं और एक पिंडी के अस्पताल में होते हैं. जो पिंडी के अस्पताल में होते हैं वो फोर्सेस का अस्पताल जो है उससे रिलेटेड, और दोनों जो है वो एक रिटायर्ड और एक करंट जो है वो रैंकिंग में है और बहुत सीनियर रैंकिंग में है. एंड जनरली ये अज्यूम किया जाता है कि जो रैंक्ड ऑफिसर्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, जनरली रैंक्ड ऑफिसर्स होते हैं, उनका एक यू नो बहुत एक स्टर्न तरीका होता है बात करने का. इनसे ज़्यादा नरम लोगों को मैंने नहीं देखा, बिकॉज वो समझ रहे थे. और मैंने दोनों दफ़ा कहा कि कैन आई प्लीज आस्क अ क्वेश्चन फॉर माई क्लैरिटी, एंड दे सेड यस ऑफ कोर्स यू कैन. सो खुद भी इंसान को पैनिक नहीं करना होता है, लेकिन दिस इज माय वेरी वेरी स्ट्रांग एडवाइस. ओपेनहाइमर के बारे में आप लोगों को बताना था और बताऊंगी कि ओपेनहाइमर की स्टोरी क्या है, बंदा कौन था ये, उसका आईक्यू क्या था, उस पर मूवी क्यों बनी है, वी विल टॉक अबाउट दिस इसके बाद. स्टे ट्यून्ड. ऑलराइट देन, कमिंग बैक टू व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. मैंने डॉक्टर की डिटेल साथ साथ खोली हुई थी. ओपेनहाइमर कौन थे जी? आईक्यू उनका था 135. The estimation assumes he would be among the top 1% of living physicists during his era. So that is basically what he was. I think I may have talked about him. जब ओपेनहाइमर की धूम थी तो उस वक्त भी शायद मैंने ये बात की हो. Sign into Google. Stay signed out. भैया आप कहाँ से आ गए? And an estimation follows the methods and assumptions utilized for Albert Einstein, offering a credible insight to Oppenheimer's intellectual क्या कहते हैं कैलिबर. यानी कि आइंस्टाइन को जितना अपने फील्ड में जहीन समझा जाता था और जिस तरह इवैल्यूएट किया जाता था कि वो कितने जीनियस हैं, ओपेनहाइमर को भी कुछ इस तरह ही समझा जाता है. इनकी जिंदगी पे मबनी एक ये फिल्म बनाई गई है जो कि क्रिस्टोफर नोलन ने आई थिंक बनाई है, राइट. सो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, हु वॉज बोर्न इन 1904 and lived till 1967, एक अमेरिकन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे और वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था, लॉस अलामोस लेबोरेटरी वर्ल्ड वॉर टू के दौरान उसके डायरेक्टर थे और उनको अक्सर कहा जाता था फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब. इस वजह से थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है और इस वजह से बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म को समझने के लिए देखा और कुछ लोगों ने इसको नहीं उस तरह सपोर्ट किया. बट एनी हाउ, सो दिस इज हिज बेसिक बैकग्राउंड. बहुत डिटेल है इनके इससे रिलेटेड, इनकी जिंदगी से रिलेटेड जो इंटरनेट पे मौजूद है. ही वॉज बॉर्न इन टू अ नॉन ऑब्जर्वेंट ज्यूइश फैमिली. नॉन ऑब्जर्वेंट यानी कि जो नहीं जुडिज्म को उस तरह फॉलो करते थे. एंड ही हैड अ यंगर ब्रदर ऑल्सो. देयर फादर वॉज किंगडम ऑफ प्रशिया का हिस्सा थे. एंड एज अ टीनेजर ओके सो हिज फादर वॉज born and was a part of the kingdom of Prussia and as a teenager made his way to the United States in 1888. उसके बाद फिर इनकी जो generation थी Mr. Oppenheimer की वो United States में हुई. इनका ताल्लुक वहाँ से, इनके वालदेन का ताल्लुक वहाँ से नहीं था. ये फिल्म जो बनाई गई है जिसमें Cillian Murphy, जिनको लोग कुछ लोग Cillian Murphy पढ़ते हैं बट इनका नाम Cillian Murphy है with a C, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon, Josh Hartnett and Florence Pugh, sab they're part of the cast and it was a super hit film. Isko IMDb pe bhi 8.4 ki ranking di gayi hai. It made, but the way the film was made, you don't have to necessarily understand the story, but I think it's about the mind of how his mind worked of this gentleman. To ye iska thoda sa background hai. Isse related jo article main dekh rahi thi, that was kidhar gaya यार, एक तो चीजें घूम जाती है. ट्रेस ओपेनहाइमर्स फुटस्टेप्स फ्रॉम न्यू मेक्सिको टू द कैरिबियन. सो इन जेंटलमैन की जर्नी के बारे में जो है वो थोड़ा बहुत व्हाट यू मे कॉल इट के बारे में बताया गया है कि वो उनकी ट्रैवल्स किस तरह की थी और उन्होंने डिस्कवरी फिर किस तरह की. सो अनलाइक व्हाट पीपल मे और मे नॉट नो, बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों पे जब वो गए और बहुत सारी जगहों पे उन्होंने टेस्टिंग की ऑल अराउंड नॉर्थ अमेरिका की अगर बात करें, बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. सो उस द फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब चेस्ड हिस्ट्री एंड देन रैन फ्रॉम इट. हियर्स हाउ टू विजिट प्लेसेस इंपॉर्टेंट टू द इन्फ्लुएंशियल फिजिसिस्ट इंक्लूडिंग अ यूएस वर्जीनिया आइलैंड्स बीच. तो इस आर्टिकल बेसिकली कवर्स किन किन मकामात पर वो गए जहाँ जहाँ उनको टेस्टिंग करने की जरूरत थी इन चीज़ों की. एंड उसके बाद अपेरेंटली एट द एंड ऑफ हिज जर्नी ही wanted to just not be in that journey anymore. That's the crux of it. We're up for another commercial break. वापस आते हैं इसके बाद. Stay tuned. Lunar eclipse साल में दो मर्तबा होता है. ठीक, अगर होता है तो दो मर्तबा होता है. Lunar eclipses happen about twice a year when the sun, earth and moon align. So the moon falls into our planet's shadow. क्या होता है कि सूरज, हमारी अर्थ जो है, दुनिया जिसमें हम रहते हैं, और हमारा चांद, हमारी अर्थ का चांद जो है, वो एक समझिए कतार में आ जाते हैं. सो द मून फॉल्स इनटू आवर प्लैनेट्स शैडो, यानी कि जो हमारे अर्थ का जिस दुनिया में हम रहते हैं उसका अक्स जो है वो, और जो चांद है उनका एक ऐसा एंगल बनता है कि आपको लगता है कि लूनर इक्लिप्स हो रहा है, डिफरेंट दिखता है. देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ लूनर इक्लिप्सेस, तीन किस्म की होती हैं, तीन अकसाम होती हैं. एक होता है टोटल इक्लिप्स जिसको ब्लड मून कहा जाता है, एक होता है पार्शियल इक्लिप्स यानी के आधा पौना, और दूसरा ब्लड मून जो होता है उसमें लिटरली लगता है कि जैसे चांद जो है वो लाल हो गया है, और तीसरा होता है पिनम्ब्रल. एक्सक्यूज मी, पिनम्ब्रल के बारे में मैं कम जानती हूँ, लेकिन पार्शियल ब्लड मून जो है उसके बारे में आई थिंक जनरली भी लोग सुनते ज्यादा हैं. तो इस साल हमें यानी 2024 में दो लूनर इक्लिप्सेस, दो चांद ग्रहण देखने को मिलेंगे. एक होगा जी 25 मार्च को और एक होगा 17 सितंबर को. 17 लोग कहते हैं ना, 17 कहते हैं ना. आई डोंट नो कि वेदर ये पंजाब में जनरली 17 बोला जाता है या उर्दू को ही इस तरह लोग प्रोनाउंस करते हैं, बट इट्स 15, 16, 17. सो 17 सितंबर को भी होगा. तो पहला जो होगा वो हल्का फुल्का होगा, विद द मून पासिंग ओनली इनटू आवर अर्थ्स आउटर फेंटर शैडो, और इसको कहते हैं पिनम्ब्रा. यानी कि हल्का होता है पिनम्ब्रा, एंड उसमें चांद जो है वो जब अलाइन करेगा हमारी अर्थ के साथ, तो अर्थ का जो बाहर का जो हिस्सा है उससे बस हल्का सा उसका एक अलाइनमेंट होगी, यानी कि एक कतार में बनेगा. कोई बहुत ज़्यादा फोर्स फुल शैडो नहीं क्रिएट होगा, और इसलिए इसको पेनम्ब्रा कहा जाता है. जो सितंबर में होगा वो ज़्यादा, अगर हमारी ज़िंदगी रही तो हमें देखने का मौका मिलेगा, उसका इफेक्ट थोड़ा ड्रामेटिक ज़्यादा होता है. एज अ पोर्शन ऑफ द मून विल पास इन टू द डार्कर पार्ट ऑफ आर प्लैनेट्स शैडो. तो आउटर जो होता है शैडो अक्स, जो बाहर का हिस्सा का अक्स होता है हमारी दुनिया का, उसमें और चांद की जो अलाइनमेंट है वो जब होती है तो एक हल्का इम्पैक्ट आता है अब हमारी नज़रों के सामने. लेकिन जो हमारी अर्थ, हमारी दुनिया का जो वो हिस्सा जो कि स्याह दिख रहा होता है लेकिन वो हमारे अक्स का हिस्सा होता है, वो और चांद जब एक लाइन में आते हैं तो इसको अम्ब्रा कहते हैं. हल्का जो होता है वो क्या होता है, पिनम्ब्रा. जो गहरा होता है उसको कहते हैं अम्ब्रा. तो उसमें लगता है कि जैसे चांद के बाहर एक और सर्कल जो है, व्हाट डू यू कॉल अ सर्कल, हैंग ऑन, आई नो व्हाट यू कॉल अ सर्कल इन उर्दू, लगेगा जैसे चांद, फिलहाल समझाने के लिए, चांद के इर्द गिर्द एक प्लेट जैसे बनाई गई हो, दायरा, सॉरी भूल गई थी मैं. सो सर्कल यानी दायरा सा लगेगा उस वक्त. सो दीज आर फैसिनेटिंग थिंग्स. इन चीजों के बारे में जानना क्यों जरूरी है, हर चीज का एक मकसद है. हमारे इर्द गिर्द इतना कुछ हो रहा हो, हम ऑब्जर्व ना करें तो फायदा. तो एक अजीम जात ने इतना कुछ बनाया है, सबके को सब चीजें भाती नहीं है, लेकिन चांद का और जमीन का ताल्लुक हम सब से है. चांद ग्रहण की तरफ दिलचस्पी ना सही, लेकिन चांद की रोशनी और चांद की मौजूदगी हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है और रेलिवेंट है. हम सबके ऊपर इसका असर होता है, जिस्मानी तौर पर होता है, हमें देखने में वो उसकी उसकी अपनी रोशनी तो नहीं होती बट दिखाई देता है. तो इट इज डेफिनेट एनी थिंग इन नेचर, कुदरत में कोई भी चीज आपके इर्द-गिर्द मौजूद है उसके बारे में बेखबर नहीं होना चाहिए, बाखबर होना चाहिए. दिलचस्पी इज अनदर थिंग, वो एक और लेवल होता है कि अगर किसी को का रुझान हो और वो ज्यादा पढ़ना चाहे. लेकिन ये एक जो एक अलूफनेस सी होती है, यानी कि आपको परवाह ना हो कि क्या हो रहा है और ये हो रही इस तरह की बड़ी चीज़ें, आतिशबाजी है, ठीक है, उससे हम डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होते हैं. या ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ के पहाड़ होते हैं, वो अगर उनके बारे में हम सब ना जानते हों लेकिन अगर जान लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हम उससे समझते हैं कि हमारी बाकी अर्थ का जो इकोसिस्टम है वो कैसे एग्जिस्ट करता है और क्यों एग्जिस्ट करता है, उसका क्या ताल्लुक है. नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में जो हो रहा है उसका हम सबके ऊपर इम्पैक्ट है, क्योंकि दुनिया चेंज हो रही है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी जमीन की सतह बढ़ रही है, यानी कि अगर बर्फानी इलाके जो हैं वो पिघलना शुरू हो गए हैं तो दुनिया भर के ममालिक जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं. तो ऐसा कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं. तो ये अभी की साइंस जो है वो हमें समझा रही है कि क्यों ये चीज़ें जो इतने अरसे से मौजूद हैं उनके बारे में जानना और उनकी कदर करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. सम ऑफ द पीपल हु आई एट लीस्ट थिंक, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक, बट माई अपने ज़ाती यू नो एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशंस, प्रेफरेंस, इंस्पिरेशन के हवाले से बात कर रही हूँ. दुनिया में मुख्तलिफ शोबों में, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी, स्पोर्ट्स में भी, हेल्थ स्पेस में तो मैं नहीं कह सकती, बट एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स दोनों में, एंटरटेनमेंट में भी होस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं ग्लोबल लोगों की बात कर रही हूँ, इवन एंटरप्रेन्योर्स की अगर बात करें, तो जिन लोगों ने अपने आप, जो लोग अपने गोल, अपने पैशन और अपनी बिलीफ से टिके रहे, पे टिके रहे, कायम रहे, उन्होंने अपना नाम भी बनाया, उन्होंने अपना काम भी बनाया, और जितने लोग उनको बावला समझते थे उतने लोग जो है वो उनके क्या कहते हैं, शदाई बन गए. वेदर वी टॉक अबाउट स्टीव जॉब्स और वेदर वी टॉक अबाउट रॉबर्ट डाउनी जूनियर, रॉबर्ट डाउनी जूनियर की आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, ऑफ हाउ ही वॉज अ कन्विक्टेड फेलन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यानी कि एक ऐसा शख्स जो कि जेल भी जा चुका है, उसने अपनी जिंदगी को इतना दुरुस्त किया, सीधा किया, यकीन किया, और इतने फिनोमिनल एक्टर अदाकार बन गए, और इतनी इज्जत करते हैं वो लोगों की, और लोग उनकी मतलब यू नो जिस तरह उनको एज एन इंस्पिरेशन लेते हैं. सो किसी भी आप में डिफरेंट लोगों, आप रॉजर फेडरर को देख लें, फेडरर ने खैर दुनिया का दिल जीता, लेकिन फेडरर को भी लोग बावला बोलते थे, एकदम यू नो क्या कहते हैं, पटरी से हटे हुए गुस्सा बहुत ज्यादा था ना उनका ऑन द फील्ड. विराट कोहली को भी आप देख लीजिए, पीपल यूज टू टॉक अबाउट हिज एंगर, हिज टेम्परमेंट, कि बदतमीज है, ये है वो. इन लोगों ने अपनी पैशन को सामने रखा इवन स्टीव जॉब्स के गुस्से के बारे में कहा जाता था, लेकिन इन लोगों ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया. एक ये कॉमननेस है, सब्र का दामन नहीं छोड़ा, अपने आप पे भरोसा किया और अपने आप को और बेहतर बनाया. तो जो भी उन्होंने फिर प्रोडक्ट, सर्विस, परफॉर्मेंस, फील्ड, स्पोर्ट्स, जो भी चीज थी उसको उन्होंने फिर इतना बेहतरीन बना दिया कि दुनिया उनको मानने लगी. शुरू में हमेशा ये होता है कि 5-10 साल लोग आपको कहते हैं कि सठियाया हुआ है, और उसके कहते हैं ना, फर्स्ट दे विल लाफ एट यू, देन दे विल, फर्स्ट दे विल लाफ एट यू, देन दे विल हेट यू, एंड देन दे विल, पता नहीं ऐसे ही कोई टर्म है, मीनिंग टू से कि लोग पहले मजाक उड़ाते हैं, फिर कहते हैं यार अच्छा इसने जो किया कुछ ठीक ही लग रहा है, चलो उसका साथ दे देते हैं, और फिर उनको हजम नहीं होता ये बात कि अच्छा कैसे इसने बना लिया है. सो यू हैव टू स्टिक टू योर सेल्फ. और इवन एंटरप्रेन्योरल जर्नीज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मैं इंटरनेशनली फॉलो करती हूँ, जिन्होंने डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है, अच्छी बात है, पिवट करना बहुत जरूरी है, कभी कभार अच्छी बात है, यानी कि जिस चीज को आप बनाने निकले हैं, इदारे को, प्रोडक्ट को, सर्विस को, ऐप को, टूल को, प्लेटफॉर्म को, जिस भी चीज को, वो रहे कोर पे, वो जिस जो मकसद था, और उसके अलावा भी अगर जब वो अच्छा बनने लगे, एस्टेब्लिश होने लगे, या उस केस में या बिल्कुल भी ना चल रहा हो और आपने बहुत सारी मुख्तलिफ चीजें ट्राई करी, उस केस में राह जो है वो हमवार चुके नहीं होती है, तो रुख थोड़ा सा आपको मोड़ना पड़ता है, जस्ट लाइक अ बोट जिसका आपको सेल सेट करना पड़ता है. यू हैव टू सेल सेट द सेल, जिससे वो बैलेंस होती है किसी और रुख में हवा के लिहाज से, राइट. सो उन लोगों ने भी अगर अपना जो भी गोल था उसको, या जो मकसद था, या दे वर वेरी श्योर ऑफ, उसको कंप्लीटली लेट गो नहीं किया. जहां लोगों ने बहुत ज्यादा कमर्शियल चीजों को अपनाना शुरू किया, कुछ लोग जिसका मैं देखती हूँ जिनको मैं बहुत मानती थी और अभी भी आई स्टिल रिस्पेक्ट फॉर व्हाट दे हैव अचीव्ड, 10 साल पहले तक, शायद 8 साल पहले तक उनको मैं बहुत ज्यादा यू नो इंस्पिरेशनल समझती थी, उन लोगों को अब मैं देखती हूँ कि उन्होंने इतनी कमर्शियल चीजें, यानी कि जो बिकेगा, सिर्फ जो बिकेगा, तो वो जो उनका मकसद शायद हटा ना हो लेकिन दिखने में उनका प्रोडक्ट, सर्विस, इमेज, कंपनी, वट एवर इट इज, वो जरा सा अगर कमर्शियल ज्यादा होना शुरू हो जाता है तो उनकी फिर फैन बेस भी पीछे थोड़ी, मुझे लगता है, जो ओरिजिनल थी वो हट जाती, शिफ्ट हो जाती है, फिर वो लोग उनको, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो कि नित नई चीजों की तरफ यू नो उनका रुझान होता है. सो हूएवर यू आर, अगर आपको वियर्ड कभी कहा गया है, या आपको टेढ़ा कहा गया है, या सठियाया हुआ कहा गया है, शायद आप बहुत ज्यादा बेहतरीन हैं एट व्हाट यू डू. जब आपको लगे कभी भी कि यू आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, या पीपल डोंट अंडरस्टैंड यू, या यू डोंट हैव फ्रेंड्स, तो ये अक्सर औकात इस बात का सबूत होता है, साइंस भी ये कहती है कि चूंकि आप मुख्तलिफ हैं फ्रॉम मोस्ट पीपल, इस वजह से यू विल स्ट्रगल टू हैव फ्रेंड्स, यू विल स्ट्रगल इवन विद योर रिलेशनशिप्स. उसमें आपने अपने आप को रिड्यूस नहीं करना है, छोटा नहीं करना है आपने कभी भी. लोग कहते हैं ना, फिट इन करने के लिए करना पड़ता है, एक्सेप्टेबल होने के लिए करना पड़ता है, नहीं, अपनी यूनिकनेस और इनफरादियत को कभी भी नहीं खोने की जरूरत होती. हाँ, अपने गुस्से को, या शायद बातचीत करने के तरीके को, या सोशलाइजिंग को आप थोड़ा सा एडजस्ट बिल्कुल कर सकते हैं, इवन इफ यू आर अ जीनियस, यू कैन. क्योंकि अगर आपको मैटर कर रहा है कि लोग आपके साथ काम करें और बात करें, अगर आपको फर्क ही नहीं पड़ता, तो वो एक और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, एरोगेंस भी हो सकती है. लेकिन अगर आपको आपकी जो जो फेथ है, जो आपका जिस चीज के ऊपर कि ये काम करेगा, ये चीज बेहतर है मेरे नजरिए में और मेरे लिए बेहतर है, यू स्टिक टू दैट, स्टिक टू योर गन्स जिसे कहते हैं. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही, तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड सायोनारा.